ज्ञान की देवी सरस्वती आपकी जीवा पर सदा विराजमान है, आप हर की पौड़ी है। ऐसे वरदान से स्वयं भगवान ने जिसको सजाया है वो है हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलो दीदी जी, जो हम सबके बीच में विराजमान है। आपने बहुत सुंदर उनका स्वागत किया हुआ है। तो दीदी मुख्यतः मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न है, और दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुंबई में ही रहते स्वयं साकार बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ, और वहीं रहते चूंकि वहां मम्मा बाबा जाया करते थे, दादियां भी जाया करते थे, तो सभी की पालना आपने ली है। और उसके बाद तो लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए। 1969 में मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा अपने ग्रेजुएशन की एग्जाम देकर, अभी रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ एग्जाम दी है, और एग्जाम देकर आप पहुंच गए मधुबन, क्योंकि बाबा तो जनवरी में ही अव्यक्त हो चुके थे और बाबा की आप में बहुत आश थी, लेकिन बाबा के रहते आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तो वो मन में कुछ था, और इसलिए जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तुरंत मधुबन में आ गए। और फिर जो प्रथम टीचर्स ट्रेनिंग चली उसमें आपने भाग लिया और आप राजयोगा टीचर के रूप में तैयार हुए। बाबा ने, दादियों ने आपको सेवा अर्थ अलग अलग स्थानों पर भेजा, भारत और विदेश में, जैसे कि आरंभ में राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर आपका नेपाल, फिर अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि, देश और विदेश की धरनी पर रहकर आपने बाबा की सेवा की, संदेश पहुंचाया, बाबा के अनमोल रत्न निकाले, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और उसके बाद 1976 में जब आप मधुबन में आए, आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा था, और वो था मधुबन निवासी बनने का। जैसे दीदी ने कहा ना, बाबा ने, दादियों ने उनको नेपाल सेवा के लिए भेजा, हमने फिर यज्ञ सेवा के लिए भेजा। हाँ, तो दादियों ने अवसर दिया कि इसी मधुबन यज्ञ भूमि में रहकर आप सेवा करें, आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से आज दिन तक इसी धरनी पर रहकर आप देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। आपने 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का झंडा देश विदेश में सबके दिलों में बसाया है, और अभी भी 1 अगस्त को फिर से दीदी का विदेश जाना हो रहा है 24 दिनों के लिए। हम जब शुरू शुरू में आए तो हम कहते थे अभी थोड़ा शॉर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी बढ़ गई है ना, नहीं तो लगभग दीदी के 40 दिन होते थे, और हम दीदी से कहते थे आप हर साल विदेश चालीसा करते हैं। हाँ, लोग अलग अलग चालीसा करते हैं ना, तो दीदी विदेश चालीसा करते हैं, लेकिन अभी चूंकि दादियां अव्यक्त हो चली है, दादियों वाला पार्ट आपके कंधों पर आ गया है, तो अब यात्रा को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो वर्तमान में दीदी हमारे राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, और मधुबन पांडव भवन की भूमि में पूरे साल भर में जो भी ज्ञान योग के कार्यक्रम चलते हैं उनके आप कोऑर्डिनेटर हैं। आधा साल विदेशी भाई बहनों के प्रोग्राम चलते हैं, और आधा साल आप जैसे भारत वाले, नेपाल से भल आए लेकिन कनेक्शन तो भारत का ही आपका है ना, तो भारत के भाई बहनों की भट्टियां जो होती है उसको आप कोऑर्डिनेट करते हैं। और सभी जानते हैं कि एक आज तो 24 घंटा हमारी दो दो तीन तीन चैनल्स चल रही हैं, लेकिन एक समय था कि टीवी के पर्दे पर जो सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी आई, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, कौन थी वो? आदरणीय शीलू देवी थी। और चूंकि जैसे इंटरनेशनल स्थान है, देश विदेश के भाई आते हैं, तो भाषाओं में अंतर होता है। सबको तो हिंदी नहीं समझ में आती है, लेकिन अंग्रेजी इंटरनेशनल होने के कारण उनको अंग्रेजी में अनुवाद दिया जाता है, फिर वो अंग्रेजी से अपनी अपनी भाषा में करते हैं। तो वो अंग्रेजी का अनुवाद लाइव बाबा इधर मुरली चला रहे हैं और उसी का इंटरप्रिटेशन करके दीदी सुना रहे होते हैं। तो ये भी सेवा जब से आप यहाँ आए तब से इसको संभाल रहे, या आज दिन तक जब हम वीडियो से बाप दादा को देखते तब भी आपकी ये सेवा आज भी चल रही है। क्यों? क्योंकि विदेशियों के लिए बाबा की आवाज माना शीलू देवी की आवाज, और अब उस आवाज में कभी परिवर्तन हो जाता है, किसी कारण से दीदी नहीं बैठ पाते तो फोन कॉल्स आ जाते हैं, क्यों आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या, हमको बाबा की भाषा नहीं आई। और उन्होंने तो इनका नाम ही रख दिया हिस मास्टर्स वॉइस, और रिकॉर्ड में आता है ना ग्रामोफोन में। तो बहुत सेवाएं हैं दीदी की तो, लेकिन वर्तमान में जो हम मुख्य पाठ देखते हैं दीदी का, कि जो दादियां अव्यक्त हो चली हैं, लेकिन यज्ञ की सेवाएं तो बढ़ती जा रही है, ब्राह्मण बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मम्मा बाबा दादियों वाली पालना जो खुद ने प्राप्त की है, वो सभी को देना, वो भासना देना, पालना करना, ये दीदी का अहम रोल जो आजकल के दिनों में हम देखते हैं। और साथ साथ हम देखते हैं उनके जीवन में सदा ही तीन गुणों की त्रिवेणी सरस्वती, हाँ, जिसको कहें सरिता बहती रहती है, और वो है मधुरता, नम्रता और धैर्यता। यू तो बहुत प्रतिभावान है, बहुत गुणवान है, कौन सी महिमा करें और कौन सी नहीं। आप इन तीन दिनों में रह के साकार में खुद अनुभव करते रहना। अब मैं अधिक न कहकर दीदी से निवेदन करती हूँ कि दीदी अपना क्लास सबके सामने रखें, भट्टी का लक्ष्य दे, प्रीत बुद्धि, ठीक है भले अनुभव ही सुना दे,
तो क्लास तो होते रहेंगे।
जी जी जी, तो दीदी को अभी हम सुनते हैं, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। तो कई सोच रहे होंगे कि सबसे पहले मैं नेपाल कब गई थी, तो जैसे बताया कि बाबा मम्मा की भी हमने पालना ली है, क्योंकि बचपन से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मैं 10-11 साल की थी मुंबई में, अपनी लौकिक माँ के साथ एक छोटी सी गीता पाठशाला में पहली बार गई, और वहाँ मुरली में बैठ गई, और ऐसे लगा जैसे मैं पूरी मुरली समझ गई, पूरा समझ में आ गया, इतनी छोटी थी। लेकिन वो बीज पड़ा, और बाबा तो मुंबई में आते रहते थे, बाबा बहुत आते थे मुंबई में, हर साल लगभग मुंबई में आते थे, क्योंकि यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी बहुत ठंडी होती थी। तो बाबा को यही कहा जाता था, क्योंकि बुज़ुर्ग थे, आज भी बाबा ने कहा ना ये बूढ़ा बाबा, तो 93 वर्ष तक बाबा ने साकार में पालना की हम बच्चों की। तो बाबा को यही राय देते थे डॉक्टर्स की, ठंडी के दिनों में आप किसी ऐसे गर्म स्थान पर जाएं, तो यहाँ तो बहुत ठंडी थी, तो बाबा अक्सर करके ये 3 महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी मुंबई में आते थे। बाबा के लिए एक अलग से फ्लैट लेते थे किराए पर, और 3 महीना बाबा रहते थे, ताकि बड़ा हॉल हो उसमें, और बाबा की रोज की सवेरे मुरली चले। तो जब भी बाबा आते थे तो हमारा ये सौभाग्य था कि बाबा की मुरली हम सुनते थे, जाते थे, फिर मुरली सुन के फिर स्कूल जाते थे। और जैसे बताया बाबा की गोद में अलौकिक जन्म हुआ, तो ये भी एक मेरा सौभाग्य है। तो जब बाबा मुंबई में आए तो मैं लगभग 11-12 साल की होंगी, तो मेरी लौकिक माता जी बाबा के पास ले गई और सीधा ब्रह्मा भोजन रखा था जहाँ बाबा ठहरे थे। तो ब्रह्मा भोजन में हम भी बैठ गए, करीब 50 माताएं थी और मेरी लौकिक माता जी मुझे लेकर आई थी। तो ब्रह्मा भोजन जैसे आजकल होता है वैसे नहीं होता था, बाबा मम्मा खुद बैठते थे और नीचे बैठते थे, कोई टेबल कुर्सियां नहीं होती थी, बाबा भी नीचे बैठ के भोजन करते थे। तो जब तक भोजन परोसा जाए तब तक जो भी भाई होते थे भोजन पर विशेष आमंत्रित, वो एक एक करके बाबा के पास जाते थे और बाबा के सामने बैठकर बाबा से दृष्टि लेते थे और फिर जैसे बाबा की गोद में सिर रखते थे और बाबा पीठ थपथपाते थे और बहुत सुंदर वरदान देते थे और फिर वापस जब दृष्टि लेते थे तो बाबा उनके मुख में गिट्टी डालते थे, भोजन एक रोटी और उसमें सब्जी, तो मतलब उनके मुख में डालते थे। अब हम लोग करीब मैं समझे 50 बहनें थी माताएं और बच्ची तो मैं एक ही थी, तो सबका टर्न आया, मेरी माता जी का भी टर्न आया तो वो भी गई बाबा के पास और बाबा से टोली ली और फिर तो मैं बाजू में बैठी थी तो मैं थोड़ा हिचक रही थी कि पता नहीं छोटे बच्चों को बाबा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ बच्ची। तो मैं थोड़ा जैसे इतना दूर बैठी थी तो बाबा ने जैसे मुझे बुलाया मैं तुरंत उठी और भागकर बाबा की गोद में चली गई और बाबा को पकड़ लिया मुझे याद है, और बाबा की गोद में गई और बाबा ने उसी समय वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, पिता के पास यानी बाबा हमें सच्चा पिता मिला। क्योंकि लौकिक में मैं 3 दिन की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो लौकिक पिता को तो कभी देखा नहीं, लेकिन बाबा को ही देखा और बाबा ने कहा वो बच्ची, तो जैसे सच्चा पिता मुझे मिल गया और फिर मानो अलौकिक जन्म हमारा बाबा की गोद में हुआ। तो कईयों से हम पूछते हैं आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, अभी तो आपसे पूछा 1 साल से 5 साल 5 से 10, लेकिन कैसे हुआ जन्म अलौकिक, तो कई अलग अलग अनुभव सुनाते हैं। कई कहते हैं दादी जी से टोली मिली तो अलौकिक जन्म हुआ, कोई कहते एग्जीबिशन देखी, कोई कहते हैं दृष्टि मिली, कोई कहते हैं कोई साक्षात्कार हुआ। तो हम तो नशे से कहते हैं बाबा की गोद में जन्म हुआ, तो ये भी सौभाग्य है हमारा। फिर तो पढ़ती रही हर साल में 3-4 बार तो मधुबन आई थी और बाबा मम्मा से मिलते रहे। 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा तो हम तो उस समय स्कूल पूरा करके कॉलेज ज्वाइन हुए थे 65 में, तो हम तो नहीं आ सके लेकिन मम्मा से भी हमने बहुत प्यार पाया। मम्मा भी बहुत आते रहते थे मुंबई में और मधुबन में भी मम्मा से मिले। तो 67 में मैं कॉलेज में थी, इंटर साइंस मैंने कंप्लीट की थी और घर में सब कह रहे थे कि आप डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, गो मेडिकल लाइन लो। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, साकार बाबा को, 67 की बात है, कि बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने मुझे पत्र का जवाब दिया, बाबा सबको पत्र का जवाब देते थे चाहे छोटे हो चाहे बड़ा, भले 2 लाइन ही लिखेंगे लेकिन जवाब जरूर देते थे। तो बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, बच्ची बाबा की आप में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने पत्र में लिखा, क्योंकि बाबा को मेरे अंदर ये भी एक जैसे बहुत आश थी। मैं जब पहली बार मधुबन आई तो हमारी टीचर जो थी बॉम्बे में समाज सेंटर की, उसने मुझे कहा था आप इंग्लिश में कोई पोइट्री तैयार करो। तो किताबों से हमने एक पोइट्री तैयार की थी इंग्लिश में, इंग्लिश तो वो इंग्लिश में पोइट्री बाबा के आगे सुनाई थी इंग्लिश में। तो बाबा तो बहुत खुश हुए, बाबा ने कहा आप इंग्लिश में बहुत होशियार हो बच्ची। और उसी समय वरदान दिया था, बच्ची और होशियार हो जाओ तो बाबा आपको विदेश भेजेगा। ये बाबा ने उस समय पहला, ये दूसरा वरदान मिला। बाबा बच्ची बाप के पास पहुंच गए, ये पहला वरदान। फिर ये दूसरा वरदान कि बाबा आपको विदेश भेजेगा। अब विदेश क्या होता उस समय तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन ये बाबा ने दूसरा वरदान दिया। फिर मैं एक बार मधुबन आई थी तो बाबा के साथ सारा दिन मम्मा बाबा के साथ सवेरे अमृत वेला क्लास, फिर बाबा के साथ झूले पर बैठना, भोजन करना, बैडमिंटन खेलते थे बच्चों से, बाबा बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट भी बाबा खेलते थे, सब बच्चों को बहलाते थे, क्योंकि क्लासेस उस प्रकार नहीं होते थे, बाबा बहलाते थे साकार में। तो बाबा माना सब कुछ, यही अनुभव होता था। तो बाबा के साथ झूले पर बैठना, तो मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलता है, बाबा के साथ हम झूले पर बैठे थे, एक तरफ मेरी लौकिक माँ और दूसरी तरफ मैं और बीच में बाबा। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची किसके साथ झूल रही हो, तो मैंने कहा बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा और कौन है झूले पर, तो मैंने कहा मेरी मम्मी मम्मी थी लौकिक। तो बाबा ने कहा अच्छा और कौन है झूले पर, तो अभी तो और कोई नहीं था, बाबा मेरी लौकिक माँ और मैं, और तो कोई नहीं था। बाबा ने कहा सोचो सोचो और कौन किसके साथ झूल रही हो, तो मैंने कहा बाबा और तो कोई नहीं है, बड़े इनोसेंटली बोला। बाबा ने कहा देखो जब बाबा के साथ झूले पर झूलती हो तो उस समय ये सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी तीन हस्तियों के साथ मैं झूले पर झूल रही हूँ। सबसे पहले सर्व आत्माओं का पिता, परम पिता शिव बाबा, वो इस रथ में विराजमान है, उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, सारी सृष्टि का पिता, उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। मैं सोचती थी तीसरा कौन, तो फिर बाबा ने कहा सतयुगी स्वर्ग का फर्स्ट राजकुमार श्री कृष्ण, उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। तो देखो तो कितने नशे की बात है, कौन किसके साथ झूले में बैठी हूँ। तो जब भी हम झूले में बैठते यही नशा रहता है हमें, तो इसीलिए बाबा 69 में जैसे अव्यक्त हुए, जनवरी में मेरा BSc मैं कर रही थी साइंस ग्रेजुएशन के लिए, तो बाबा अव्यक्त हो गए। तो मुझे तो, मैं तो बॉम्बे में थी, घर में रहती थी, वो शनिवार का दिन था और रात को 8 बजे मैं सेंटर से घर गई, क्योंकि क्लास कराती थी मैं और एग्जीबिशन म्यूजियम था बॉम्बे में, वो समझाती थी, कोर्स कराती थी, तो कराती रहती थी। तो 8 बजे मैं घर गई, लेकिन फिर अगले दिन संडे था तो बाबा तो 8:45 के बीच रात को अव्यक्त हुए, रात्रि क्लास करा करके कमरे में गए, लेकिन हमें तो पता नहीं था। तो मैं तो घर गई थी, लौकिक घर में रहती थी, पढ़ रही थी। तो जब सवेरे में संडे के दिन आई तो हमने देखा, संडे के दिन तो कितने भाई बहन होते हैं क्लास में, तो उस दिन कोई दादी नहीं, तो दादियाँ बॉम्बे में ही रहती थी, बहुत दादियाँ रहती थी बॉम्बे में, तो कोई नहीं। तो हमने पूछा कहाँ गए सब, तो कहा सब मधुबन गए। क्यों, रातों रात मधुबन गए, क्योंकि न्यूज़ तो मिल गई थी कि बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो बाबा ने शरीर छोड़ा है, और जैसे ही मुझे ये समाचार मिला बाबा ने शरीर छोड़ा है, मेरे तो जैसे होश उड़ गए, मेरे वो जैसे मेरी टांगे कांपने लगी, और जैसे लगा ये धरती खिसक जाएगी या आकाश फट जाएगा, पता नहीं क्या क्या उस समय मेरी स्थिति हो गई। और मैंने कहा बाबा चले गए, बाबा चले गए, और पहला संकल्प ये आया बाबा चले गए तो बाबा की आश मैंने पूरी नहीं की। बाबा की आश क्या थी कि विश्व की सेवा करनी है, और हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो विश्व की सेवा क्या करेंगे हमें, तो बाबा की इच्छा तो हमने पूरी की नहीं। तो उसी समय मुझे बहुत सुंदर अनुभव हुआ, जैसे अव्यक्त बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता रूप में जैसे मेरे सामने लाइट रूप में आए, और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा की आश पूरी करोगे, ये बाबा ने उस समय वरदान दिया। और मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ ही रहूँगा, बच्चों के साथ ही वापस जाएंगे। ये ऐसे जैसे एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई मुझे उसी समय, तो थोड़ी आथत मिली मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे और पढ़ाई नहीं करनी है कुछ भी, अब तो बाबा की सेवा में लग जाना है। तो फिर तो बाबा मधुबन में या ये अव्यक्त बाबा ने ये मुरली में कहा, क्योंकि दादी ने बाबा से पूछा बाबा अभी मधुबन में क्या होना होगा, तो बाबा थे तो सब बाबा से मिलने आते थे, अभी साकार में बाबा नहीं तो फिर मधुबन कौन आएगा, क्या करेंगे। तो तब बाबा ने अव्यक्त बाबा ने मुरली में कहा था अभी यहाँ बठिया रखो, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो, यहाँ पर बाबा बच्चे आएंगे, कुमारियों की ट्रेनिंग, माताओं की, युगलों की, बठिया रखो टीचर्स की, क्योंकि सेवाएं तो बहुत हो ही रही थी। तो जो पहली कुमारियों की ट्रेनिंग थी उस समय 69 अप्रैल में, तो उसमें मैं आई, पढ़ाई तो पूरी हो गई थी और वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई उसमें। सारी जो हमारी मुख्य बड़ी बहनें हैं इस समय, जैसे चंद्रिका बहन, आशा बहन, आरती बहन, मुन्नी बहन, वो भी उसी में थी, बहुत सारी हमारी पुरानी पुरानी बहनें थी। और हमारी राज दीदी तो उस समय पटना में रहते थे, नहीं आप कहाँ थे, आप पटना में, आप?
मैं तो पंजाब में थी
पंजाब में थी। तो उस समय हम ट्रेनिंग करने आए और अव्यक्त बाबा ने ये विशेष कहा कि ये एक महीने की ट्रेनिंग आपने मधुबन में की, क्योंकि सब दादियों को बाबा ने बुला लिया था, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, कूंज दादी, सब दादियों को। तो 1950 के बाद जैसे यहाँ भारत में आना हुआ कराची से, बाबा ने सबको सेंट्रों पर भेजा, और 69 में बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने सबको मधुबन बुलाया, जो मुख्य मुख्य दादियाँ थी। और दादी प्रकाशमणि तुम्हारी टीचर थी बॉम्बे में, दादी बॉम्बे में रहती थी, दादी प्रकाशमणि, और बाबा ने दादी को मधुबन में रखा। तो दादी से भी तो शुरू से ही हमारा अच्छा संबंध था, तो कैसे फिर मधुबन में ट्रेनिंग हुई। और उसके बाद हमने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा अभी एक मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने किसी सेंटर पर जाना है, तो मैंने तो संकल्प किया कि मैं सेंटर पर जाऊंगी सीधा। और राजकोट का निमंत्रण मिला, उस समय बाबा ने राजकोट में भारती बहन है उनको कहा था वहाँ सेंटर खोलो, तो वो मधुबन में आई हुई थी कि हमको एक हैंड चाहिए, इतनी बहनें हैं, एक हैंड दो। तो फिर मैं राजकोट गई और उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर वापस आई, क्योंकि कॉलेज का सारा काम था, किताबें वगैरह वापस करनी थी, लाइब्रेरी से बहुत कुछ लिया था। और फिर मैं मुंबई गई और मुंबई में फिर हमने जो भी हिसाब किताब था सब पूरा किया और फिर मुंबई में सेंटर पर रहना शुरू किया। तब दादी पुष्प शांता थी, बहुत पुरानी दादी, उनको मैंने कहा कि मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मुझे कहीं और जगह भेजो, क्योंकि यही बुद्धि में था। बाबा ने मुझे ये कहा तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो विदेश का तो ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि जहाँ इंग्लिश में सेवा हो, इंग्लिश में। आज भी याद कर रही थी राज बहन, तो तो क्या हुआ, तो अब कहाँ इंग्लिश में सेवा मिलेगी। उस समय तो अभी विदेश में भी सेवा केंद्र तो खुले नहीं थे, तो दादी जी ने मुझे बैंगलोर भेजा, तो क्योंकि बैंगलोर में इंग्लिश फिर भी चलती है। तो बैंगलोर में मैं 1.25 साल रही और फिर जैसे मैं वापस आई तो राज दीदी ने डिमांड की दादी जी से कि हमको, क्योंकि वह एग्जीबिशन लगाई थी काठमांडू में, 71 की बात है ये, 70-71 बैंगलोर में थी। तो काठमांडू में उस समय हिप्पी राज था, हिप्पीज बहुत आते थे, हिप्पी लोग, विदेशी लोग, और ड्रग्स व्रग्स बहुत मिलते थे काठमांडू में, तो खास वो पीने के लिए खाने के लिए हिप्पी लोग थे। और इन राज दीदी ने वहाँ एग्जीबिशन लगाए थे उसी एरिया में जहाँ हिप्पी लोग आते थे, तो उसने कहा कि हमको ऐसे हैंड्स दो जो इंग्लिश में म्यूजियम वो जो एग्जीबिशन समझा सके। और तो पटना से कितने सारे भाई बहन गए थे एग्जीबिशन के लिए, बहुत सेवा हुई थी। तो दादी जी ने मुझे काठमांडू भेजा, राज दीदी ने कहा, तो तब मैं राज दीदी के पास रही। पटना से कैसे हम लोग गए थे काठमांडू, मैं दीदी को बता, मैं दीदी को बता रही थी उस समय हम काठमांडू कैसे पहुंचे, 71 की बात है। तो न कोई उस समय फ्लाइट्स थी उस प्रकार की, और न कोई ब्रिज थी, मतलब रास्ते भी कोई अच्छे नहीं थे। तो हमने कहा सारे वाहनों की यात्रा की, बैलगाड़ी पर भी चढ़े थे, बैलगाड़ी और जहाज, गंगा नदी पार की थी, गंगा नदी पार करके मुजफ्फरपुर। हाँ, अभी तो वहाँ ब्रिज है, अभी तो बस है, सब कुछ है, फ्लाइट है, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो कितने दिन लगे काठमांडू पहुँचने में, लेकिन काठमांडू का अनुभव तो फिर बहुत ही सुंदर था। और वो तो फिर राज दीदी बहुत अच्छा सुनाती है, मेरे से भी ज़्यादा। तो खैर, तो फिर तो हम एक साल रहे, एक साल रहे, लेकिन मुझे ये अंदर में संकल्प था कि मुझे बर्फ़ देखनी है, स्नोफॉल कैसे होता है, क्योंकि मैंने स्नोफॉल कभी नहीं देखा था। अभी जनवरी का महीना था, 72 की बात है। तो मुझे फिर मधुबन आना था, तो सबसे पहला हमने उसी दिन स्नोफॉल देखा, जनवरी महीने में काठमांडू का स्नोफॉल, सब सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। तो मुझे वहाँ का एक अनुभव बहुत अच्छा लगता है। तो इतनी ठंडी तो थी, बहुत ठंडी थी, तो मैं देख रही थी सबके मुंह से धुआं निकल रहा है, तो मैं कहती थी ये सिगरेट तो पी नहीं रहे हैं। ये मुंह से धुआं कैसे निकल रहा है? तो फिर थोड़ी देर के बाद देखा मेरे मुंह से भी निकल रहा है। तो मैंने कहा ये धुआं क्यों निकल रहा है? तब बताया कि ये ठंडी के कारण, वो मुंह से जैसे अंदर की गर्मी निकलती है ना, तो धुआं निकलता है। फिर मैंने कहा मैंने स्नोफॉल नहीं देखा है, बर्फ वो कैसे गिरती है। और सचमुच हम निकल रहे थे बाय रोड आई बस में, और इतना सुंदर दृश्य लगा, सब सफ़ेद सफ़ेद। हाँ, मैंने कहा मेरी काठमांडू की यात्रा सफल हुई, यहाँ नेपाल की यात्रा सफल हुई, और चारों ओर हरियाली हरियाली, इतना अच्छा लगा जो बात मत पूछो। फिर तो मैं काठमांडू कई बार आई हूँ अभी बीच में, कितने साल पहले, कोई ज़्यादा नहीं, कई बार आई हूँ। बठियाँ कराई है काठमांडू में, सब कुमारों की, कुमारियों की, माताओं की, नहीं, चारों बठी कराई है जी। हाँ, बहुत कराई है, और सब सेंटरों पर दीदी ने मुझे घुमाया, सब सेंटरों पर। हाँ, हर सेंटर पर जाना, तो मैं देखती थी कैसे पहाड़ों पर रहती है बहनें, हाँ, इतना दूर रहती है, इतना चढ़ कर के पहाड़ पर, वो सेंटर है बाबा के सेंटर पर, बहुत सुंदर। और एक बार तो बाय रोड ही गए थे, तो वो जैसे बताया ना, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी, और कौन सी नदी है वो, हा? कौन सी, बागमती ने, तो लास तक, बागमती भी होगी पता नहीं। तो नारायणगढ़ भी गए थे, कई विराट नगर गए थे, ये पुरानी बहने, हाँ, बीरगंज भी गए थे, तो जनकपुर गए, सब जगह गए, कोई स्थान छोड़ा नहीं होगा हम सब। फिर तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मानो हम तो ये कहेंगे पूरा नेपाल घूम लिया। क्योंकि अभी 2-3 साल पहले मैं पोखरा गई थी, तो उस तरफ भी गई थी पोखरा और ये सब एरिया में। तो नेपाल तो, और नेपाली भाषा सीख ली मेरी तो। फिर हमने तो देखा बेंगलोर गई तो कन्नड़ा भाषा सीख ली, क्योंकि कन्नड़ा चल रही है। फिर काठमांडू आई तो नेपाली में सब बोलो। हाँ, मुझे, मैं तो बहुत बोलती थी, जैसे किरण बहन जी बोलते ना, मैं तो अच्छा बोलती थी। मुझे अभी भी एक वाक्य याद है, तपाई को 7 दिन को कोर्स करनू हुन्छ। क्योंकि आते थे लोग आते थे तो मैं उनसे ये प्रश्न करती थी हाँ तो वो फिर मलाई को तपाई को मैंने पहले कहा मलाई मलाई क्या होता है तो फिर हमने तो कुछ शब्द सीख लिए आनुस खानुस बसनुस हेरनुस जानुस उस लगा दो तो इस प्रकार से वहाँ पर मैंने कहा वहाँ सब खाते हैं पीते कोई नहीं है भाई हम तो पानी पीते हैं दूध पीते हैं हाँ चाय पीते हैं तो चिया खानुस हाँ तो मैंने कहा सब खाते हैं हम तो खाना माना उसको चबा चबा के जैसे वो पीना होता ना तो वो भी खानुस तो मैंने कहा बहुत अच्छा तो मैं काफ़ी सारी नेपाली भाषा सीख गई थी लेकिन बाबा ने फिर और जगह भेजा फिर नेपाल से जब मैं आई तो फिर दूसरा निमंत्रण मिला हैदराबाद का वहाँ हैदराबाद में बाबा ने हमारे मनिंदर भाई है मनिंदर सिंह कुलदीप बेन के लौकिक पिताजी वो मिलिट्री में थे तो रिटायर हुए थे तो बाबा ने उनको कहा था आप हैदराबाद में सेंटर खोलो तो वो भी मधुबन आया था सेंटर खोल करके कि हमको इंग्लिश हैंड चाहिए क्योंकि मुझे बुद्धि में था बाबा ने इतना मुझे इंग्लिश में जो पढ़ा कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी इंग्लिश मीडियम बहुत स्ट्रांग था तो कि इंग्लिश में सेवा हो तो फिर बाबा दादी जी ने फिर मुझे हैदराबाद भेजा तो वहाँ हैदराबाद में गई तो वहाँ तो तेलुगु भाषा तेलुगु इंग्लिश तो बहुत कम तो तेलुगु भाषा सीख ली हमने हाँ ये भी सीख लिया तो खैर बहुत नेपाली तेलुगु कन्नड़ा फिर मैं कुछ समय श्रीलंका गई थी 3 महीना श्रीलंका में रही तो वहाँ तमिल भाषा सीख ली हाँ तो देखो भाषाएं इतनी है बाबा कितना वर्णन करते कितनी भाषाएं हैं तो कुछ भाषाएं सीख ली अभी हम यूरोप जा रहे हैं 31 जुलाई को यहाँ से निकलेंगे और 1 अगस्त को फ्लाइट है वहाँ यूरोप में 3 देशों में ही जा सकती हूँ एक तो यहाँ से हम जाएंगे पहले स्पेन में बहुत बड़ी रिट्रीट रखी है सारे स्पेन के भाई बहनों की वहाँ स्पैनिश भाषा चलती है स्पेन में और कई टापू है छोटे छोटे वहाँ पर सिंधी लोग बहुत रहते हैं तनरीफ सिंधी और क्या एरिया है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ तो वहाँ भी जाना होगा वो भी निमंत्रण दिया है उन्होंने फिर तो वहाँ पर है 8 दिन फिर पोर्चुगल जिसको बाबा याद करते वास्को डा गामा पोर्चुगल से आए थे भारत में तो पोर्चुगल में लिस्बन शहर है वहाँ भी बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है और स्पेन में भी है बार्सिलोना में मैड्रिड जो राजधानी है स्पेन की वहाँ पर नया सेंटर लिया है उसका उद्घाटन भी है फिर पोर्चुगल में भी रहना होगा कुछ दिन फिर जर्मनी जाऊँगी तो जर्मनी में बहुत अच्छा बड़ा रिट्रीट सेंटर है वहाँ पर रिट्रीट्स होती रहती है बाबा की वैसे मैं 91 में पूरे यूरोप का टूर किया था 91 में तो करीब 12 देशों का किया था फिर तो उसके बाद मैं फिर से गई थी इटली गई थी 75 से भी अधिक देशों में बाबा ने भ्रमण तो कराया और पर बाबा ने ये भी वरदान दिया कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो जैसे कहा ना तो मैं बाबा के सामने बैठी थी तो बाबा ने मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा ही तो और भी सब है आप कौन सी विशेष गंगा हो तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ बहती गंगा हूँ क्योंकि गंगा तो बहती रहती है तो बाबा ने कहा नहीं बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है क्योंकि वो गंगा होती ना एक सेवा केंद्र पर बहन रही फिर दूसरे सेंटर पर गई तीसरे सेंटर पर गई वो बहती जाती है स्टूडेंट्स जो है भक्त लोग तो वहीं होते हैं और गंगा में नहाते हैं तो वो बहती गंगा वो है जो सेंटरों पर बहने रहती है आप कौन सी गंगा हो तो मैं मुझे तीसरा नाम नहीं आ रहा था तो मैं चुप हो गई तब बाबा ने कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो हर की पौड़ी हरिद्वार में हर की पौड़ी है सारी दुनिया यहाँ आकर तुम्हारे में नहाए सारी दुनिया तुम्हारे में यहाँ आके नहाएगी तो बस बाबा ने वो वरदान दे दिया ठीक है ओम शांति ओम शांति ओम शांति